आस्तिक के हाथ अरुणिमा के गले तक पहुंच चुके थे और वो लगातार अरुणिमा के गले को दबे जा रहा था। अरुणिमा जमीन से करीब 1.5 फीट ऊपर हवा में लटकी हुई थी और आस्तिक ने उसे दीवार से चिपका रखा था। आस्तिक ने खतरनाक आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की? तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? तुमने इस कमरे की पवित्रता को खराब किया है। तुम्हारे आने से इस कमरे में गंदगी आ गई है। आस्तिक की पकड़ इतनी तेज थी कि अरुणिमा का दम घुटने लगा था। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उसका चेहरा भी लाल हो रहा था। वो अपने हाथ पैरों को झांकते हुए सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी। अरुणिमा की आंखों में आंसू आ गए थे और वो आस्तिक के उन लाल दानव जैसी आंखों को देख रही थी जिसमें दया की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। पर शायद भगवान को अरुणिमा पर दया आ गई थी, इसीलिए दरवाजे पर पृथ्वी आ गया। उसे एहसास हो गया था कि अरुणिमा बहुत देर से वापस नहीं आई है, कहीं वो महल के अंदर भटक न गई हो, इसीलिए वो अरुणिमा को ढूंढता ढूंढता यहां आया था। पृथ्वी जल्दी से आस्तिक के पास आता है और उसे बाजू से पकड़ते हुए खींचते हुए कहता है, भाई क्या कर रहे हैं आप, वो मर जाएगी। लेकिन आस्तिक ने बिना दया दिखाए अरुणिमा के गले पर अपनी पकड़ बनाए रखी, जैसे वो चाहता हो कि अरुणिमा मर जाए। लेकिन पृथ्वी भी कम नहीं था, उसने अपने पूरे जोर से आस्तिक को अरुणिमा से अलग किया। पृथ्वी ने आस्तिक को जबरदस्ती दूर करते हुए उसे जागकर रखा था कि वो दोबारा से अरुणिमा पर हमला ना कर दे, और अरुणिमा वहीं जमीन पर बैठकर जोर से हांफने लगी, जोर जोर से सांस लेने लगी। एक बार के लिए तो उसने भी अपने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी और उसने अपने अंतिम पलों में अपनी बहन और अपनी माँ को याद किया। आस्तिक ने आग उगलते हुए आवाज में पृथ्वी को देखकर कहा, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? पृथ्वी ने बात संभालते हुए कहा, भाई वो गलती से आ गई होगी, वो कीर्ति की दोस्त है, पार्टी में आई थी, वॉशरूम यूज करने के बाद शायद वो रास्ता भटक गई होगी और गलती से यहाँ आ गई है। आस्तिक ने अरुणिमा के ऊपर गहरी नजर रखते हुए कहा, बाहर निकालो इस गंदगी को यहाँ से। पृथ्वी ने आस्तिक को देखते हुए धीरे से कहा, भाई वो हमारे मेहमान हैं। आस्तिक की सिर्फ एक गहरी निगाही कहीं थी पृथ्वी को ये बताने के लिए कि वो लड़की इस घर में सिर्फ एक कचरे की वैल्यू रखती है। पृथ्वी जल्दी से अरुणिमा के पास आता है जो नीचे जमीन पर बैठकर जोर जोर से सांस ले रही थी। पृथ्वी अरुणिमा को कंधे से उठाता है और कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। अरुणिमा की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो एक नज़र उठाकर आस्तिक को देख सके। पृथ्वी अरुणिमा को लेकर हॉल में आता है और उसे सोफे पर बैठाता है। वो जल्दी से एक सेवक से पानी मंगवाता है और जैसे ही वो सेवक पानी लेकर आता है, पृथ्वी अरुणिमा को पानी का ग्लास देता है। अरुणिमा एक सांस में पानी पी जाती है, जैसे कि इस वक्त उसे सांस ही नहीं आ रही थी और उसे पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। पृथ्वी ने अरुणिमा के सामने बैठते हुए धीरे से कहा, क्या तुम ठीक हो? अरुणिमा बहुत घबरा गई थी। उसने घबराई नजरों से पृथ्वी को देखा और कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया राजा साहब, खामखा मुझ पर गुस्सा हो रहे थे, मैंने उनके किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया है। पृथ्वी ने कहा, आराम से, मुझे पता है कि तुमने कुछ भी नहीं किया है। दरअसल बात ऐसी है कि भाई बहुत गुस्सैल आदमी है, उन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, और वो कमरा तो उनके लिए बहुत खास है, वो कमरे में किसी भी अजनबी का जाना बर्दाश्त नहीं करते हैं, इसीलिए उनका गुस्सा तुम पर उतर गया है। मैं भाई की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। हालांकि पृथ्वी ने माफी मांग ली थी, लेकिन फिर भी अरुणिमा के जहन में सिर्फ और सिर्फ वो डरावना चेहरा ही घूम रहा था। पृथ्वी ने जब देखा कि अरुणिमा शांत नहीं हो रही है तो वो उठकर खड़ा होता है और अरुणिमा के सामने आते हुए कहता है, देखो अरुणिमा, अगर तुम इस तरीके से परेशान होती रहोगी तो कीर्ति मुझसे नाराज हो जाएगी, और मैं तुमसे माफी मांग ली है ना, मुझे लगता है कि तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुमसे और माफी मांग लेता हूँ और तब तक मांगता रहूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती हो। कहते हुए पृथ्वी अपने दोनों कानों को पकड़ लेता है और अरुणिमा के सामने उठक बैठक करने लगता है। पृथ्वी ऐसा ऐसा करते हुए बार बार कह रहा था, आई एम सॉरी अरुणिमा एक, आई एम सॉरी अरुणिमा दो, आई एम सॉरी अरुणिमा तीन। अरुणिमा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है क्योंकि पृथ्वी सच में मजाकिया लग रहा था और जिस तरीके से वो माफी मांग रहा था वो सच में बहुत फनी था। जब पृथ्वी ने देखा कि अरुणिमा पहले से शांत है और अब वो हंस भी रही है तो उसने अपने कान छोड़े और अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, क्या मैडम, मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांग रहा हूँ और तुम वहां पर हंसी जा रही हो, अब ये तो बता दो कि तुमने मुझे माफ किया या नहीं किया, या मुझे और उठक बैठक करनी है। हद है यार, सिंघल का छोटे कुंवर सा एक लड़की को मारने पर लगे हुए हैं, कोई सुनेगा ना तो हंसेगा मुझ पर। पृथ्वी की बात सुनकर अरुणिमा और जोर से हंसने लगती है। ये पहली बार था जब इस घर में कोई इतना खुलकर हंस रहा था, इस बात से बेखबर कि किसी की तीखी निगाहें इस वक्त अरुणिमा के ऊपर हैं। पृथ्वी ने अरुणिमा को नॉर्मल कर दिया था और वो दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए थे। पृथ्वी अरुणिमा को लेकर गार्डन एरिया में वापस आता है। पृथ्वी ने स्पेशली अरुणिमा से कहा था
कि वो कीर्ति को इस बारे में कुछ ना बताए, वो खामखा डर जाएगी। और अरुणिमा ने उसकी बात भी मान ली थी और इसी के साथ उसने ये तय कर लिया था कि इस महल में ये उसका आखिरी बार है जब वो आई है। आज के बाद ना वो इस महल के बारे में सोचेगी और ना कभी यहाँ पर हरकत करेगी। अरुणिमा तो वापस आ गई थी, लेकिन शायद वो वहां पर कुछ छोड़ आई थी, किसी के जहान में अपनी छाप छोड़ आई थी। वही महल में आस्तिक उस कमरे में अभी भी बैठा हुआ था। वो सामने कुर्सी पर बैठा हुआ दीवार पर लगी हुई उस तस्वीर को देख रहा था। उसकी आंखें इस समय भयानक लाल हो रखी थी, क्योंकि सामने तस्वीर में कोई और नहीं बल्कि आस्तिक की माँ थी। आस्तिक जब भी बहुत ज्यादा बेचैन होता या फिर उसे सही राह नहीं मिलती तो वो यहाँ पर आकर अपनी माँ की तस्वीर से बात किया करता था, लेकिन उसकी माँ ने कभी भी पलटकर उससे बात नहीं की। आज भी कुछ ऐसा ही था। आस्तिक अपनी माँ से बात कर रहा था, अपने मन का बोझ हल्का कर रहा था कि तभी अचानक से आस्तिक का फोन बजने लगता है। ये बहुत जरूरी फोन था, इसीलिए उसे इसे अटेंड करना था। आस्तिक बस 5 मिनट के लिए ही फोन अटेंड करने के लिए बाहर गया था और वो दरवाजा बंद करना भूल गया था।